Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om, Om, Om. Adiguru Shankaracharya Virachit दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग है।
विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतम् यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमइदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राणिर्विकल्पम् पुनर्मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकमसत् कल्पार्थकम् वासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिताम् यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोत्तरस्थितमः दीपप्रभास्वरम् ज्ञानम् यस्य तु चक्षुराधिकरणद्वारा बहिःस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तम् जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये देहम् प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिम् च शून्यम् विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशम् वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुसुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित् त्यन्तस्फुरन्तम् सदा प्राणानम् प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वम् पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदत स्वप्ने जाग्रति वा ययेष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदम् श्री दक्षिणामूर्तये भूरं वाञ्छनलोनिलोम्बरमहर् नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदम् यस्यैव मूर्त्यश्चकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्माद्विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितम् स्यादीश्वरत्वम् स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरस्तदा परिणतम् चैश्वर्यमव्याहतम्
ओ दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में सातवें श्लोक की व्याख्या है। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तस्फुरन्तम् सदा स्वात्मानम् प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। सन्मात्र करणोपसंहरण तो यो भूत सुसुप्त पुमान। छठे श्लोक में ये कहा, व्यक्ति जब शयन करने जाता है, सोने को जाता है, तो उस समय उसके सारे करण जो बाहर के पदार्थ ज्ञान के साधन थे, जगत भान का साधन जो थे, वे सब करण उपसंहृत हो जाते हैं। वेदांत के परिभाषा अनुसार अविद्या में सब साधन लीन हो जाते हैं। उस अवस्था में भी अपने से भिन्न पदार्थ का भले ही भान न होता हो, लेकिन अपना भान उस समय भी यथावत रहता है। संसार में यह कभी भी संभव नहीं है कि किसी को अपना कभी भी भान न हो, यह संभव ही नहीं है। इसीलिए आत्मा को साक्षी माना है, इसलिए आत्मा को ज्ञान स्वरूप माना है। सन मात्र सत्ता मात्र की स्फुरणा प्रतीति अनुभूति उस सुसुप्ति अवस्था में भी होती रहती है। उदाहरण दिया, जैसे चंद्रमा में या सूर्य में ग्रहण लगते हैं, उस ग्रहण के पूर्ण ग्रहण के अवस्था में सूर्य और चंद्रमा का स्पष्ट भान नहीं होता, दिखता नहीं। सभी लोग कहते हैं कि आज सूर्य नहीं दिखाई पड़ा, चंद्रमा ग्रहण ने इस तरह राहु ने उसको ढक लिया कि सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, राहु ने इस तरह ढक लिया है कि चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। विशेष रूप में भान न होने पर भी चंद्रमा और सूर्य का सामान्य भान यथावत होता रहता है। उस सामान्य भान को राहु केतु हटा नहीं सकते हैं। इसी तरह करणों का उपसंहार होने पर भी आत्मा का सामान्य भान अनुभूति प्रतीति स्वसंवेद्य रूप में उस समय भी होता रहता है। इस बात को प्रत्यभिज्ञा से सिद्ध करते हैं। वेदांत के एक नया शब्द है प्रत्यभिज्ञा, वो प्रतिविज्ञा क्या है कि प्राग अस्वाप्सम इति, मैं पहले सोया था, गहरी निद्रा में सोया था और उस अवस्था में मैंने कुछ नहीं जाना। किसने कुछ नहीं जाना? मैंने कुछ नहीं जाना। तो सोकर उठने वाला व्यक्ति अपने अनुभव को इस तरह प्रतिविज्ञान करके सुनाता है कि मैं सुसुप्ति अवस्था में भी था, गहरे निद्रा में भी था और उस अवस्था में सारे कर्णों का उपसंहार हो जाने के कारण कर्णों के द्वारा होने वाले सारे ज्ञान और ज्ञान के विषय ये सब नहीं थे, उसको जानने वाला साक्षी मैं हूं, मैं था। या जागने के बाद इस प्रकार की हर व्यक्ति प्रतिविज्ञा का स्पष्ट अनुवाद करता है। प्रागव स्वाप समिति प्रबोध समय यह प्रत्यभिज्ञायते, और ये प्रतिविज्ञान करने वाला जो व्यक्ति है वह साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है और वही आत्मा है, वह नित्य है, ये प्रतिविज्ञान से सिद्ध होता है। ये छठे श्लोक में प्रतिविज्ञान की प्रतिज्ञा कर दी। इस सातवें श्लोक के द्वारा उसी प्रतिविज्ञा का विस्तार पूर्वक व्याख्या कर रहे हैं। सुरेश्वराचार्य जी ने इस छठे सातवें श्लोक की व्याख्या से पहले प्रतिविज्ञा के बारे में एक विशेष बात कही है। प्रत्यभिज्ञा बलादात्मा स्थायी निर्धार्यते यदि का नाम प्रत्यभिज्ञेसा किंवा तस्याः प्रयोजनम्। आपने प्रतिविज्ञा के आधार पर आत्मा को स्थायी सिद्ध किया यानी नित्य सिद्ध किया और आत्मा को एक सिद्ध किया। आत्मा यदि दो होते तो सुसुप्ति का अनुभव करने वाला आत्मा भिन्न और जगने के बाद जागृत का अनुभव करने वाला आत्मा भिन्न होता तो सुसुप्ति का प्रतिविज्ञा जागृत में स्मरण पूर्वक न होता, क्योंकि यह बात पहले बताया जा चुका है कि स्मृति या प्रतिविज्ञा उसी को होता है जिसको पहले अनुभव किया हुआ होता है। अनुभव का ही पुनर्स्मृति होता है तो उस स्मृति और अनुभव के बीच में प्रतिविज्ञा काम कर रहा है। ये प्रतिविज्ञा किस जगह पर है, प्रतिविज्ञा की क्या भूमिका है, प्रतिविज्ञा ये क्या वस्तु है बोला, इसकी जिज्ञासा आपके मन में हो सकती है। स्मृति और अनुभव, अनुभव और स्मृति, क्योंकि पहले अनुभव होगा बाद में स्मृति होती है और अनुभव और स्मृति के बीच में प्रतिविज्ञा रहता है, उसी प्रतिविज्ञा के चलते बाद में स्मरण होता है। तो स्मृति और प्रतिविज्ञा में यह अंतर होता है कि प्रतिविज्ञान के लिए जो वस्तु पहले अनुभव किया था प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, ये ध्यान देना, इसीलिए कुछ लोग प्रमाण के अंतर्गत प्रतिविज्ञा को नहीं मानते हैं तो प्रतिविज्ञा को नहीं मानते, क्योंकि प्रमाण है प्रत्यक्ष शब्द अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि। कुछ लोग एक प्रमाण मानते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसी को प्रमाण मानते हैं, उसी को प्रत्यक्ष बोलते हैं। कुछ बात प्रवचन की में कोई ऐसी बात आ गई और आपने सुन ली और उसके बाद आप चले जाओ बाहर और सत्संग की चर्चा करते हुए आपने उस बात को कह दिया किसी के सामने, तब वो सुनने वाला व्यक्ति जिससे आप कह रहे हो, वो सुनने वाला व्यक्ति कह रहा है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तब आप उसके सामने बड़े जोर लगाकर कहोगे कि नहीं ये बात सही है, तुम किस आधार से कह रहे हो ये बात सही है, तो आप बड़े भरोसे से कहोगे कि हमने प्रेमपुरी आश्रम में स्वामी जी के मुख से ये हमने सुना है, खुद मैंने सुना है। इतना भरोसे से आप जो कह रहे हो इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं खुद उपस्थित था और मैंने अपने कानों से सुना है, स्वामी जी ने कहा है। अब भाई स्वामी जी भी गलत भी तो कह सकते हैं स्वामी जी, तो आपको भरोसा है कि स्वामी जी गलत नहीं कह सकते, प्रमाण पूर्वक स्वामी जी इस बात को कहते हैं, इसलिए स्वामी जी के बारे में हमें शंका नहीं करना है। और उस बात को मैंने अपने कान से सुना, ये शब्द प्रत्यक्ष हुआ, तभी जाकर आप दूसरों को कहोगे। और वो व्यक्ति भी जब स्वामी जी का नाम आप लोगे तब तो कहेगा कि स्वामी जी ने कहा है। अच्छा भाई, तो फिर हम खुद स्वामी जी के पास जाकर इस बारे में स्पष्टीकरण लेंगे, तब वो आएगा, फिर उसके बाद स्पष्टीकरण लेगा, फिर हम प्रमाण युक्ति अनुभूति इन सब के आधार पर उसको समझा देते हैं, तो उसके शंका की निवृत्ति हो जाती है, वो विश्वस्त होकर चला जाता है कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप। तो ये होता है, इसको कहते हैं प्रमाण, क्योंकि वेदांत में प्रमाण को और लक्षण को बड़ा महत्व दिया गया है। ये कहते हैं कि लक्षण प्रमाण अभ्याम वस्तु सिद्धि, कोई भी वस्तु आप जो देख रहे हो वह जिस रूप में दिख रहा है उसी रूप में है कि नहीं, इसको ठीक प्रूफ करने के लिए आपके पास दो साधन की आवश्यकता पड़ती है। जब उन दो साधनों का प्रयोग करके उसके परीक्षण करते हो तो उन दो साधनों में वह खरा उतरता है, तब आपके मन में उस वस्तु के बारे में पक्का हो जाता है कि हाँ ये वस्तु यही है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वह प्रमाण और लक्षण से वो वस्तु घट रहा है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण, वेदांत में वाक्य आता है, कोई व्यक्ति केवल प्रतिज्ञा कर देने से, मुख से कह देने से मात्र से वह पदार्थ सिद्ध नहीं होगा। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में मुख से एकदम कह दिया कि वस्तु ऐसा है, इतनी मात्रा से वो वस्तु सिद्ध नहीं होगा। उसने जो बात कही है उस वस्तु के बारे में, उसके अनुकूल प्रमाण और लक्षण मिलता है कि नहीं, ये समझदार व्यक्ति प्रमाण और लक्षण को प्रयोग करके तब उसके कथन को प्रमाणित करना चाहेगा। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण, यहां आपने प्रतिविज्ञा ये इस युक्ति से, प्रतिविज्ञा के माध्यम से आत्मा के बारे में दो चीज सिद्ध करने की कोशिश की। एक चीज तो आत्मा नित्य है, इस बात को सिद्ध करने की आपने कोशिश की। दूसरी बात है कि आत्मा एक ही है, इस बात को भी सिद्ध करने की आपने कोशिश की, क्योंकि प्रागव स्वाप समिति प्रबोध समय यह प्रत्यभिज्ञायते, जागृत में जागृत अनुभव करने वाला आत्मा, स्वप्न में स्वप्न अनुभव करने वाला व्यक्ति और सुसुप्ति में सुसुप्ति अनुभव करने वाला व्यक्ति, ये तीन अवस्था के तीन अनुभवकर्ता ये अलग अलग नहीं है, वह एक ही है। कैसे सिद्ध हो रहा है ये कही है, तब कहते हैं कि नहीं, सुसुप्ति का जागृत में आकर वह स्मरण करते हुए ये कहता है, इसके बीच में प्रतिविज्ञा ये काम करती है कि उसी व्यक्ति को स्मृति होती है जिसने पहले अनुभव किया है, उसी व्यक्ति को होगा, दूसरे व्यक्ति को स्मृति नहीं होती है। इसलिए पहले देखने वाला व्यक्ति और स्मरण करने वाला व्यक्ति के बीच में ये प्रतिविज्ञा का अवस्था है, वह प्रतिविज्ञा ये सिद्ध करता है कि वही व्यक्ति यह है। हमने इस बारे में बहुत कहा है, देखो प्रत्यक्ष में और स्मरण माने प्रतिविज्ञा में यह अंतर है। प्रत्यक्ष में जो वस्तु सामने होता है उस वस्तु को प्रमाण द्वारा इंद्रियों द्वारा देखा जाता है और उसमें व्याप्ति दोष आदि न हो, लक्षण विकल आदि न हो, यत्वाभास आदि न हो, और ठीक प्रमाण के द्वारा वह परीक्षण होने पर वो वस्तु के बारे में ज्ञान होता है, ये वस्तु ऐसा है, ये प्रत्यक्ष है। और प्रतिभिज्ञा में ये होता है कि पहले देखा हुआ वस्तु और आज देखे हुए वस्तु, ये दोनों वस्तुओं के बीच में एक प्रतिभिज्ञा विद्यमान रहता है। वह ये है कि बहुत लोगों ने प्रतिभिज्ञा को स्मरण के अंतर्गत, स्मृति के अंतर्गत ले लिया और अलग प्रतिभिज्ञा नहीं मानी, लेकिन शंकराचार्य जी स्मृति में और प्रतिभिज्ञा में अंतर मानते हैं। स्मृति वहां होती है वस्तु पहले दिखा हुआ हो और उस वस्तु का जो ज्ञान आपके पास हो और उस ज्ञान का आप कालांतर में और देशांतर में वो वस्तु न दिखने पर भी उसके ज्ञान का और उस वस्तुओं का आप स्मरण करते हैं, तो वहां स्मृति होता है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन कालांतर वस्तु, दिखा हुआ वस्तु, पहले कभी दिखा हुआ वस्तु, वही वस्तु कालांतर में माने आज जाकर फिर कहीं दूसरी जगह दिखाई पड़ता है, तब उस पहले दिखे हुए वस्तु में और आज दिखने वाले वस्तु के बीच में जो एक समन्वय करने का तत्व है और उसके द्वारा जो स्मृति जग गई है, ये वस्तु को तो मैंने 10 साल पहले वहां देखा था, ये केवल स्मृति नहीं है, क्योंकि वह वस्तु आज प्रत्यक्ष सामने है। 10 वर्ष पहले भी वह प्रत्यक्ष हुआ था, 10 वर्ष के बाद भी वह वस्तु प्रत्यक्ष हुआ था। अब इधर 10 वर्ष पहले का देश और काल अलग है, आज 10 वर्ष से बाद का देश और काल अलग है, दोनों देश और काल के बीच में एकता संभव नहीं है, क्योंकि वह भूतकाल में चला गया, आज वर्तमान काल में है, वह दूसरे जगह पर था, आज दूसरे जगह पर खड़े हैं, इसके बावजूद भी वो दोनों की एक रूपता बनाने वाला प्रतिविज्ञा होता है। स्मृति के लिए वर्तमान में वस्तु प्रत्यक्ष होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों में से बहुत हरिद्वार गए हो महाकुंभ मेले में, वहां जो कुछ भी देखा है, आज हरिद्वार नहीं है यहां, आज कुंभ मेला भी नहीं है, हरिद्वार भी नहीं है, वही वातावरण यहां नहीं है, फिर भी आप उसका स्मरण आज कर सकते हैं आप, वह केवल स्मरण होगा, वह प्रतिभिज्ञा नहीं कहलाएगी। बात समझ गए कि नहीं? वह प्रतिभिज्ञा नहीं कहलाएगी, केवल स्मरण होगा उसका। स्मरण में और प्रतिभिज्ञा में ये अंतर आप समझ लेना। स्मृति के लिए पहले दिखना जरूरी है, वस्तु का होना जरूरी है, उस वस्तु का दिखना जरूरी है, उस वस्तु का अनुभव होना जरूरी है, उस वस्तु के बारे में सही ज्ञान होना जरूरी है। तो देखा और सही ज्ञान हो गया, तब वह ज्ञान आपके में संस्कार के रूप में विद्यमान था, वो सब कुछ आपके अंतःकरण में संस्कार के रूप में रह गया। अब कालांतर में आप उसको स्मरण कर सकते हैं, स्मरण करने के लिए वह वस्तु की आवश्यकता नहीं, वह वातावरण की आवश्यकता नहीं, उस देश काल की आवश्यकता नहीं है। भिन्न देश में, भिन्न काल में, भिन्न परिस्थिति में, भिन्न अवस्था में आप उसको बैठकर स्मरण कर सकते हैं। लेकिन प्रतिविज्ञा में ऐसा नहीं चलेगा, आप कमरे के अंदर बैठकर स्मरण करके प्रतिविज्ञा बन जाए, ऐसा नहीं होगा। जो वस्तु पहले देखा था वही वस्तु आज भी दिखना चाहिए, सामने होना चाहिए, तो सामने होते ही आपको यह निश्चय होगा कि इस वस्तु को 10 साल पहले मैंने देखा था। वस्तु सामने आने पर जब आपको ये पक्का हो कि इस वस्तु को 10 वर्ष पहले फलाने जगह फलाने परिस्थितियों में मैंने देखा था और वही वस्तु आज इस जगह पर इस परिस्थिति में मुझे दिख रहा है, वह पहले देखे हुए वस्तु का और आज दिखते हुए वस्तु के बीच में ये प्रतिविज्ञा के चलते एकता सिद्ध करता है। ये सिद्ध नहीं कि वो वस्तु अलग था ये वस्तु अलग था, ये होने नहीं देगा। ये प्रतिविज्ञा के उपस्थिति ये विशेषता है। ये प्रतिविज्ञा विशेष करके स्वयं देवदत्त तत्त्वमसि इस वाक्य के शोधन में इस प्रतिविज्ञा का प्रयोग होता है। स्वयं देवदत्त, हाँ स्वयं देवदत्त। कोई आपको कहे कि आप किसी नए जगत चले गए, मान लो कि आप 50 वर्ष या 25 वर्ष पहले कहीं गए थे और 25 वर्ष 30 वर्ष के बाद फिर पुनः आपको वहां जाना पड़ा और वहां गए तो वहां के व्यक्ति ने कहा कि आपको शहर घुमाते हैं, तो उसने कहा कि चलिए मैं आपको शहर घुमाता हूं। तो आपने कहा कि नहीं, 25 वर्ष पहले मैं आया था, ये शहर घूम चुका हूं। तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, 25 वर्ष पहले का शहर दूसरा है, आज का शहर अलग है, क्योंकि इस बीच में इतना परिवर्तन हो गया, इतना परिवर्तन हो गया। तो आपके मन में इच्छा हो गई कि अच्छा तो फिर घूमने चलते हैं, आपको ऐसे ऐसे जगह में ले जाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा ऐसा चीज। तो आपको उसके गाड़ी में बैठ गए या उसके पीछे लगकर चल पड़े। वो लेकर चला गया एक जगह,